मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 24 नवंबर 2016 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के सब्जेक्ट के लिए मैंने जिस विषय को चुना है, सच पूछे तो वो पिछले ही विषय का एक्सटेंशन है। मैं उसी को थोड़ा सा विस्तार देते हुए अपनी बात कुछ और बातें रखना चाहूंगा। पहला तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए देना चाहूंगा कि जो साउंड ऑफ साइलेंस पर जो लाइफ मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को दिया था, उस पर मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं पढ़ने को मिली हैं और आप में से बहुत से प्रिय श्रोताओं ने ये रिक्वेस्ट की है कि उसी टॉपिक पर एक दो लेक्चर्स और यदि प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। मैं देखता हूं आगे जैसे ही संभावना बनेगी, मैं डेफिनेटली उस पर कुछ बातें और करना चाहूंगा, क्योंकि करने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन अब उसके लिए मुझे थोड़े से उपयुक्त समय की तलाश करनी पड़ेगी ताकि उसकी कंटिन्यूटी बाधित न हो, तो उस पर हम लोग कभी बात करेंगे। मित्रों, आज हम लोग कल के सिलसिले को ही आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अभी जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कुछ समय से मुझे जो ईमेल मिल रहे हैं और यहां तक कि मैडम प्रीति अग्रवाल के पास भी जो लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड काउंसलिंग के लिए जो कॉल्स आ रहे हैं, फोन जो आ रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ विचित्र किस्म की समस्याओं की चर्चा हो रही है। विचित्र उस रूप में मत समझिए कि नहीं होनी चाहिए या कोई अद्भुत है या कोई अमानवीय है या कोई जादुई है, इस रूप में नहीं। विचित्र इस मायने में कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है, मुझे लगता है, जब एक ही तरह की समस्याएं शायद सबको पकड़ने लगती हैं या एक ही तरह की समस्याओं के बारे में लोग सोचने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपन्स, लेकिन यह होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मेल्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो अभी प्रेम की समस्याओं को लेकर काफी इस बीच में मेल आए, एक दो और भी दूसरे तरह की समस्याएं थी, हालांकि मेल की संख्या काफी थी। तीन तरह की कैटेगरी इस तरह के मेल्स की हैं मित्रों, और उन तीनों कैटेगरी को मैं आज एक साथ एड्रेस करने की सोच रहा हूं। बहुत से मेल्स इस बात को लेकर के होते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया मतलब प्रेम में धोखा दिया। लड़का लड़की से शिकायत करती है और लड़की लड़के से शिकायत करती है कि उसने मुझे धोखा दिया, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं क्या करूं। दूसरे इस तरह के भी मेल होते हैं कि उसका मेरे साथ प्रेम प्रसंग चलता रहा और अब वो ये कह रही है या ये कह रहा है कि एक डेढ़ साल के अंदर अंदर या तो तुम कोई नौकरी कर लो, नहीं तो फिर मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी या मेरे घर वाले किसी दूसरे से शादी कर देंगे मेरी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, मैं जब भी बात करूं तो आप उसे जेंडर से परे मानिएगा, क्योंकि मैं एक मेल हूं और स्वाभाविक रूप से मेरे जुबान पर पुरुषवाचक क्रियाएं ही चढ़ी हुई हैं, तो इसीलिए अगर मैं पुरुषवाचक क्रियाओं का प्रयोग करूंगा, शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो आप ये मत समझिएगा कि इस तरह के मेल लिखने वालों में सिर्फ लड़के ही हैं या मैं केवल लड़कों की ही बात कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों जेंडर की बात कर रहा हूं और सच में मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि कम से कम अब लड़कियां भी इस मामले में खुलकर बात करने लगी हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी भी जिंदगी है और जिंदगी पर उनका भी बराबर हक है, और सच पूछे तो हमारे समाज में उनका बराबर हक है, वो बराबर की ही है। ये जो दुनिया चल रही है ये केवल पुरुषों के भरोसे नहीं चल रही है, दुनिया केवल पुरुषों के भरोसे नहीं बन रही है, तो मुझे इस बात की खुशी है। तो आप इसे जेंडर से परे मानिएगा। तीसरी तरह की जो समस्याएं जो अभी पढ़ने को मिल रही है मित्रों, वो आर्थिक स्थितियों को लेकर है कि मैं क्लासेस करना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं फलाना करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये तीन तरह के मेल्स मैंने क्लासिफाइड किए हैं और इन तीनों की जो समस्या है, सच पूछे तो उस समस्या की जड़ में जो है वो एक ही है और वह है स्थितियों को समझ न पाना। मित्रों, मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि आप सब जो अभी यंग हैं, जिनके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, शक्ति भरी हुई है, क्षमता भरी हुई है, मानसिक सोच समझ भरी हुई है, वो अपने आप को कैसे इतना कमजोर महसूस करते हैं, कैसे इतना कमजोर महसूस कर सकते हैं आप कि कोई आपकी जिंदगी से एक निकलकर चला जाता है और आपको लगता है जैसे कि जिंदगी चली गई हो, एक निकलकर चला जाता है, आपको लगता है कि जैसे आप अकेले हो गए हो, इतनी बड़ी दुनिया है और आपको लग रहा है अकेले हो गए हैं, आपके माता पिता भाई बहन घर परिवार के दादा दादी नाना नानी इतना बड़ा समूह जो जन्म से आपके साथ है वो आपको दिखाई नहीं देता और केवल एक के जाने से आपको लगता है कि सब कुछ चला गया। मित्रों आप क्यों अपने को इतना कमजोर इतना दयनीय महसूस करते हैं? आपने क्यों अपने आप को सच पूछे तो मोम का पुतला बना लिया है कि जरा सी दुख तकलीफ की गर्मी हुई नहीं कि पिघलने लगे, या यूं कह लीजिए कि मिट्टी का पुतला बना लिया है कि जरा सी बारिश हुई नहीं कि गलने लगे? मित्रों याद रखिए, रिमाइंड कीजिए, पुनर्स्मरण कीजिए, आप सब चट्टान के बने हुए हैं, रॉक्स हैं, और उस रॉक्स से अब कटाई करके कटाई करके कटाई करके एक खूबसूरत मूर्ति इमर्ज होनी है। और इसके लिए अगर मूर्ति रॉक से आपको मूर्ति निकालिए, चट्टान से अगर मूर्ति निकालनी है तो छेनी और हथौड़ों के जो आघात हैं वो तो सहने पड़ेंगे ही, उसके बिना तो फिर चट्टान एक चट्टान ही बनी रहेगी, वो मूर्ति में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को किसी एक पर टिका देते हैं, इसकी जरा से व्यावहारिकता पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि चलिए कोई लड़का ही है और वो कह रहा है कि कोई लड़की कह रही है कि तुम एक डेढ़ साल में या तो नौकरी कर लो नहीं तो मेरे माता पिता या मैं खुद दूसरे से शादी कर लूंगी, तो हमें ये धोखा दिखाई देता है कि वो हमें धोखा दे रही है। हम लोग के जमाने में एक बड़ा खूबसूरत फिल्मी गीत चला था और खूब लोग गुनगुनाते थे उसको कि एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया और चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। मित्रों उस समय ये गाना खूब चलता था, कॉलेज वगैरह में हमने देखा है कि लड़के इसको खूब गुनगुनाते थे क्योंकि उस समय जो मिडिल लोअर मिडिल क्लास के जो लड़के थे उनके दिल को दिलासा दिलाने के लिए ये गाना मरहम का काम करता था। देखिए उस समय जो लड़कियां भी कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी वो थोड़े से अच्छे घरानों की होती थी, आज जैसी एजुकेशन नहीं थी कि हर तरह के आर्थिक स्थिति की लड़कियां पढ़ रही हैं, थोड़े से जो अच्छे ऊंचे अच्छे परिवारों की लड़कियां पढ़ती थी। अब ये होते थे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग, पसंद करने के लिए थोड़ी सी लड़कियां होती थी तो ये उनको पसंद कर लेते थे और वो उन इनको भाव नहीं देती थी और उस पर इनको अपना मरहम लगाने के लिए हो जाता है कि चांदी की दीवार न तोड़ी, खूब गुनगुनाते थे, उस समय के युवाओं का ये बड़ा प्रिय गाना था। तो मित्रों मुझे लगता है इसको अब थोड़ा सा हम समझें, मैं समझने की बात कर इसको समझें, इस रूप में समझें कि जो लड़की सच में ये कह रही है कि एक डेढ़ साल में या तो नौकरी कर लो या फिर बात खत्म हो जाएगी, तो ये धोखा दे रही है या हमें कुछ सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है, वो जिंदगी की शिक्षा दे रही है कि जो जिंदगी है ये केवल प्यार प्रेम और ये कल्पना और सितारों की बात से नहीं चलनी है, जिंदगी धरती है जिसके लिए मैंने कल कहा था, उसके लिए जरूरी है कि हम आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करें, अपने पैरों पर खड़े हों, तो करो ना वो, और फिर इसको प्रेरणा के रूप में लीजिए, चैलेंज के रूप में लीजिए और उसको करके दिखाइए। और इसी तरह से शिकायतें आती कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, मेरा उन सबसे एक सवाल है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सके इसके लिए आपने किया क्या है? चलिए आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये आपकी एक पैतृक स्थिति है ना, आपके पिता गरीब रहे उतना अर्न नहीं कर सके, जो भी स्थितियां रही हो चलिए कोई बात नहीं, हो तो स्थिति है, वो कोई अभिशाप नहीं है, वो एक स्थिति है। आपने क्या किया उस मजबूती के लिए, कुछ किया? क्योंकि आपको लगता है नहीं नहीं मेरा तो काम पढ़ना है और पढ़ने के दौरान क्या कोई कुछ कर सकता है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। आपको गलतफहमी है, जाकर के फॉरेन कंट्रीज में देखिए, बिल गेट्स का जो बेटा था, बिल गेट्स का बेटा जो आज हिंदुस्तान का नंबर वन का धनी व्यक्ति है, उसका बेटा जब कॉलेज में जाता था, मालूम है कॉलेज में जाता था तो बकायदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जो भी वहां होती थी उससे जाता था और अपना अर्न भी करता था, अर्न भी करता था। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसी कॉलेज में मेरे चाचा जी रहते हैं अमेरिका में, ह्यूस्टन में, उनका बेटा भी जाता था, उसने ये बात मुझको बताई है। तो वो तो इतना धनी है लेकिन वो काम कर रहा है, वो अपना अर्न कर रहा है, अपना पॉकेट मनी वो खुद अर्न करता है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की शिकायतें करते हैं उनसे प्रश्न ये किया जाना चाहिए या उनको ये समझना चाहिए कि भाई ठीक है कमजोर स्थिति है कोई बात नहीं, लेकिन हमने क्या किया है, क्या हमने उसको ठीक करने के लिए कुछ किया, या बस बता बता करके हम खुश हो रहे हैं और एक तरह से समाज के ऊपर दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करो। कोई नहीं करेगा, और सच पूछिए तो अगर दूसरे कुछ कर भी देंगे तो वो ज्यादा टिकेगा नहीं, टिकता तो वही है जो हम खुद अर्न करते हैं, खुद हासिल करते हैं, दी हुई चीज नहीं टिकती है। मित्रों, आप देखिए आज के अखबारों में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में, मैंने भी पढ़ा है कि सिविल सर्विस के जो टॉपर रहे एग्जामिनेशन के, टीना डॉबी और आमिर, ये दोनों अब मैरिज करने जा रहे हैं। अखबारों में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। दोस्तों, कभी आपने एक मैरिज की ये सिंपल सी खबर आपने सुनी, फर्स्ट और सेकेंड रैंक के लोग आपस में मिलने जा रहे हैं, जीवन साथी बनने जा रहे हैं, कभी इस पर विचार किया? आप आमिर को देखिए, स्मार्ट है, और मैं सच बताऊं तो जो आमिर की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जो रिदम है, एग्जामिनेशन की तैयारी पर जो पकड़ है, जो गहरी दृष्टि है, वो अद्भुत है। मैंने किसी भी टॉपर से इस तरह की बातें जो स्टूडेंट है नहीं सुनी। मैं आमिर का सच पूछे तो फैन हूं। टीना डॉबी फर्स्ट पोजीशन पर है, अच्छी है, शुरू से पढ़ने में ब्रिलियंट रही है, बहुत अच्छे परिवार को बिलोंग करती है। आपको क्या लगता है कि इन लोगों के मन में कभी इस तरह के प्रेम प्यार की भावनाएं नहीं पैदा हुई होंगी, या दूसरों, ये चलिए किसी के प्रति अट्रैक्ट हुए हो या न हुए हो, क्या दूसरे इनके प्रति अट्रैक्ट नहीं हुए होंगे? दोस्तों, हुए होंगे, ये मत मान करके चलिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उसे समझा कि हमको अभी करना क्या है, और अभी हम अगर इस तरह के फैसले लेते हैं तो हमारी जिंदगी के लिहाज से बेहतर नहीं होंगे। और जब उनकी जिंदगी स्टेबल हो गई, दोनों टॉपर हो गए, दोनों आईएएस में आ गए, तो अब उनको ये आभास हुआ कि नहीं, अब चूंकि हम सिविल सर्विस में आ गए हैं तो हमारे लिए जो बेस्ट जीवन साथी हो सकता है वो उसी सर्विस का हो सकता है, और वो हो गया। तो आखिर में उन लोगों ने उसको समझ करके वहां कहीं ना कहीं मर्यादा में रहे, उसे कंट्रोल किया, उसे बर्दाश्त किया, जो भी आप कह लीजिए, उसके पकड़ में आकर के अपनी जिंदगी को खत्म तो नहीं कर लिया, डिप्रेशन में तो नहीं आ गए, देवदास तो नहीं बन गए, काम किया ना, और बेस्ट किया, जो बेस्ट कर सकता है कोई युवा, पढ़ाई करने वाला, कॉम्पिटिशन में बैठने वाला, वो किया, और बेस्ट ही नहीं किया बल्कि बेस्ट तरीके से किया। तो मित्रों, इन चीजों को समझिए, आप अपनी वक्त को जानिए, इन छोटी छोटी चीजों के आधार पर इतने अमूल्य जिंदगी को दो कौड़ी का बनाने के बारे में कभी मत सोचिए, बहुत मूल्यवान है। और ये जिंदगी, पता नहीं अगले जन्म में हम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, और ये प्रकृति ने हमको दी है, कितनी बड़ी कृपा उसने हम पर की है, इसकी वैल्यू बनाइए। वैल्यू अपने आप में नहीं बनती है, चट्टान को जब आप मूर्ति में कन्वर्ट कर देते हैं तो हजारों गुना ज्यादा कीमती हो जाती है, अदरवाइज तो चट्टान पड़ी ही पड़ी है, कुछ कोई नहीं उसको पूछ रहा है। तो आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, फिर हम आगे और बातें करेंगे। आप सब अपने अपने विषय सुझाइए, उसके आधार पर हम आगे सब्जेक्ट पर अपनी बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।